जनसंख्या प्रवास माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। प्रवास किसी स्थान या प्रदेश की जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तीन मौलिक कारकों जन्म मृत्यु तथा प्रवास में से एक है। किसी भी मानव समूह की जनसंख्या में वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है, जन्मों की वृद्धि से और दूसरा भारत से बाहर से आने वाले मनुष्यों के वहां बसने या रहने से। उसी प्रकार जनसंख्या ह्रास भी दो कारणों से हो सकता है, मृत्यु दर में वृद्धि से और दूसरा जनसंख्या के अन्य स्थानों के लिए स्थानांतरित होने से। इस प्रकार किसी स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों के आगमन अथवा वहां से मनुष्यों के बहिर्गमन को ही प्रवास या प्रव्रजन कहते हैं। इसे देशांतरण या स्थानांतरण की संज्ञा भी दी जा सकती है। बोग 1959 ने केवल उस निवास परिवर्तन को प्रवास माना है जिसमें किसी व्यक्ति या उसके परिवार का पूर्ण आवास परिवर्तन तथा सामाजिक पुनर्समायोजन हो जाता है। उन्होंने स्थानीय संचलन लोकल मूवमेंट को प्रवास के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया है। स्थानीय संचलन या विचरण का अभिप्राय किसी मानव समुदाय का स्थानीय क्षेत्र में आवागमन से है जिससे किसी अन्य क्षेत्रीय इकाई या जन समुदाय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रवास का अर्थ है एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान, प्रदेश, देश आदि को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बस जाना। अतः प्रवास के लिए स्थान परिवर्तन के साथ साथ दोनों स्थानों में न्यूनतम दूरी का भी होना आवश्यक माना जाता है। किंतु एफ एस ली के जैसे कुछ विद्वान प्रवास के लिए किसी न्यूनतम दूरी की सीमा को आवश्यक नहीं मानते हैं। इन वैचारिक विभिन्नताओं के होते हुए भी सामान्यतः एक ही अधिवास ग्राम या नगर के भीतर परिवर्तन को प्रवास नहीं माना जाता है क्योंकि इससे कोई विशेष सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होते हैं। जेलेंस्की 1971 के अनुसार संचरण सर्कुलेशन जिसमें लघु दूरी और बार बार घटित होने वाली अथवा चक्रीय प्रकृति की गतिशीलता सम्मिलित होती है में अस्थायी अथवा दीर्घकालीन आवास परिवर्तन का अभाव पाया जाता है। अस्थायी या अर्ध अस्थायी आवास परिवर्तन के अभाव में संचरण को सामान्यतः प्रवास या प्रव्रजन से अलग समझा जाता है। अतः प्रवास में निवास स्थान का अस्थायी अथवा अर्ध अस्थायी परिवर्तन का होना आवश्यक माना जाता है। सामान्यतः प्रवास का अभिप्राय किसी व्यक्ति के स्वाभाविक निवास स्थान के स्थानांतरण से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रवास की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। प्रवास सामान्यतः निवास स्थान को बदलते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी इकाई के लिए भौगोलिक गतिशीलता का एक रूप है। भौगोलिक परिभाषिक शब्दकोश में आर्यन सिंह और एसडी मौर्य ने प्रवास की परिभाषा इस प्रकार दी है। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान के लिए अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन प्रवास जनसंख्या प्रवास कहलाता है। इन्होंने जनसंख्या प्रवास के स्थान पर जनसंख्या स्थानांतरण शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रवास के प्रकार टाइप ऑफ माइग्रेशन। प्रवास से संबंधित विभिन्न लक्षणों के अनुसार जनसंख्या प्रवास के अनेक वर्ग हो सकते हैं। प्रवास के समय, प्रवास की अवधि, प्रवास में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रवास की क्षेत्रीय प्रकृति आदि आधारों पर प्रवास का वर्गीकरण किया जा सकता है। ए कालानुसार प्रवास। ऐतिहासिक काल के अनुसार जनसंख्या प्रवास को सामान्यतः चार वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, प्रागैतिहासिक प्रवास, प्री हिस्टोरिकल माइग्रेशन। प्रागैतिहासिक प्रवास मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के कारण होते थे। प्लिस्टोसीन हिमकाल के हिमयुगों और अंतर हिमयुगों के क्रमिक आगमन से जलवायु क्रमशः शीतल और गर्म हो जाती थी। प्रारंभिक मानव प्रजातियों का उद्भव मध्य एशिया में हुआ माना जाता है। जब यहाँ की जलवायु गर्म होती थी, यहाँ मानव प्रजाति का विकास होता था और जनसंख्या बढ़ जाती थी। किंतु दीर्घकाल बाद हिमयुग के आगमन से जब जलवायु अत्यंत शीतल हो जाया करती थी, तब यहाँ के लोग बाहर की ओर पलायन किया करते थे। एक लंबे समय के बाद पुनः अंतर हिमयुग आने पर बचे हुए लोगों का फिर विकास होने लगता था। इस प्रकार जलवायु के शीतल होने पर मध्य एशिया से बाहरी क्षेत्रों के लिए मानव प्रवास होते रहते थे। जिन प्रजातियों का उद्भव पहले हुआ, वे पर्वतीय प्रजातियों से कमजोर होती थी, अतः वे अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्रमशः बाहरी प्रदेशों में पहुंच गईं। मध्य एशिया से प्रागैतिहासिक प्रवास के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में प्रजातियों के वितरण का वर्तमान स्वरूप पाया जाता है। दूसरा, ऐतिहासिक प्रवास, हिस्टोरिकल माइग्रेशन। आधुनिक काल में होने वाले ऐतिहासिक काल में होने वाले प्रवास को मुख्यतः तीन श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्राचीन कालीन प्रवास, मध्यकालीन प्रवास और आधुनिक कालीन प्रवास। यूनानी तथा रोमन साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप होने वाले मानव प्रवास, भारत में आर्यों का आगमन और भारत से धर्म प्रचार के लिए बर्मा, श्रीलंका, मलाया, जावा आदि के लिए भारतीयों का प्रवास प्राचीन स्थानांतरण का उदाहरण है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों से जनसंख्या का उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान यूरोप में मध्यकालीन प्रवास को प्रकट करता है। भारत में पश्चिम से आक्रमणकारियों का सर्वाधिक प्रवास मध्यकाल में ही हुआ, जिसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, बाबर, चंगेज खां आदि के आक्रमण प्रमुख थे। आधुनिक काल में होने वाले जनसंख्या प्रवासों में यूरोपीय प्रवास सर्वाधिक बृहत और शक्तिशाली था। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप के विभिन्न देशों से लाखों लोगों ने यूरोप से उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रवास किया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या का वर्तमान स्वरूप इसी मानव प्रवास का परिणाम है। इसके अतिरिक्त अधिक जनसंख्या वाले देशों जैसे प्राचीन जापान, भारत आदि से भी बड़ी संख्या में जनसंख्या का प्रवास निकटवर्ती देशों तथा अफ्रीका के लिए हुआ। 17वीं शताब्दी में पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में बसाव आरंभ हुआ था और 19वीं शताब्दी में वहां जनसंख्या का प्रवास पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ। बी, अवधि के अनुसार प्रवास। जनसंख्या प्रवास की अवधि दीर्घकालीन, अल्पकालीन, दैनिक अथवा मौसमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अतः प्रवास में लगने वाली समय अवधि के अनुसार प्रवास को निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, दीर्घकालीन प्रवास, लॉन्ग पीरियड माइग्रेशन। दीर्घकालीन प्रवास शताब्दियों में कभी कभी होते हैं, जिनका कोई नियत समय नहीं होता। इस प्रकार का प्रवास सामान्यतः बड़े पैमाने पर होता है, किंतु यह लघु पैमाने पर अथवा अल्पसंख्यक प्रकार का भी हो सकता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि के लिए होने वाला प्रवास इसी मानव प्रवास इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अल्पकालीन प्रवास, शॉर्ट पीरियड माइग्रेशन। इसके अंतर्गत वे मानव प्रवास सम्मिलित हैं जिनकी अवधि थोड़ी होती है। इसमें प्रवासी कुछ दिन या कुछ महीने के भीतर ही अपने मूल स्थान को लौट आते हैं। देशाटन, तीर्थयात्रा, सद्भावना यात्रा, राजनीतिक उद्देश्यों से की गई देश विदेश की यात्रा, व्यापार संबंधी यात्रा आदि के रूप में लघु समय के लिए होने वाली मानव प्रवास को इस वर्ग में रखा जाता है। दैनिक प्रवास डेली माइग्रेशन, प्रतिदिन होने वाले जनसंख्या प्रवास मुख्यतः बड़े नगरों और उनके उपनगरीय क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। बड़े नगर या औद्योगिक केंद्र के बाहर उसके उपनगरीय क्षेत्र में स्थित आवासीय उपनगरों तथा ग्रामों से प्रतिदिन प्रातःकाल बड़ी संख्या में लोग कारखानों तथा कार्यालयों में काम करने के लिए या अन्य उद्देश्यों से मुख्य नगर के लिए प्रवास करते हैं। वे दिन में नगर में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और शाम होने पर पुनः अपने अपने आवास गृहों को लौट जाते हैं। इस प्रकार प्रातःकाल बाहर से नगर की ओर और सायंकाल नगर से बाहर की ओर दैनिक प्रवास को देखा जा सकता है। चौथा, मौसमी प्रवास सीजनल माइग्रेशन, वर्ष के किसी निश्चित समय या ऋतु में प्रतिवर्ष होने वाले मानव प्रवास को मौसमी प्रवास कहते हैं। इस प्रवास का समय और अवधि लगभग निश्चित होता है। मौसमी प्रवास उच्च पर्वतीय प्रदेशों में अधिक होते हैं। हिमालय और आल्पस पर्वत के उच्चवर्ती भागों में रहने वाले लोग ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे भागों में रहते हैं। उस समय वहां मौसम निवास योग्य रहता है तथा पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह भी उपलब्ध रहता है। शीत ऋतु आरंभ होने पर चारागाह बर्फ से ढक जाते हैं और ठंडक बहुत बढ़ जाती है, अतः शीत ऋतु के आरंभ होते ही वे अपने परिवारों तथा पशुओं के साथ निचली घाटियों के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरी शीत ऋतु में वे निचली गर्म घाटियों में व्यतीत करके ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में पुनः उच्चवर्ती भागों के लिए चल देते हैं। इस प्रकार का प्रवास प्रतिवर्ष ऋतु परिवर्तन के साथ होता रहता है। विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से संसार के अन्य भागों में भी मौसमी प्रवास के उदाहरण मिलते हैं। सी, आकार के अनुसार प्रवास। प्रवास में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या या आकार के अनुसार प्रवास के दो वर्ग हो सकते हैं। पहला, बृहद प्रवास या बृहद संख्यक प्रवास। प्रवास में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होने पर प्रवास को बृहद संख्यक कहा जाता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों से अटलांटिक पार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए होने वाले मानव स्थानांतरण का बृहद प्रवास के उत्कृष्ट उदाहरण है। सन 1947 में भारत पाक विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत को होने वाला लाखों हिंदू मुस्लिमों का स्थानांतरण अद्वितीय प्रकार का बृहद प्रवास था। दूसरा, लघु प्रवास या अल्पसंख्यक प्रवास। लघु प्रवास में व्यक्तियों की संख्या कम होती है। गोष्ठियों में भाग लेने के लिए अथवा कूटनीतिक उद्देश्यों से प्रतिनिधि मंडलों के प्रवास और खिलाड़ी टीमों का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास लघु प्रवास के उदाहरण है। किसी विशेष कारण से या एक या कुछ परिवारों का प्रवास भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्षेत्र डी, क्षेत्र के अनुसार प्रवास। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जनसंख्या का प्रवास किसी स्थान या प्रदेश से कहां के लिए हुआ है। स्थानीय या क्षेत्रीय विश्लेषण भौगोलिक अध्ययनों का मूल आधार है, अतः क्षेत्रीय विस्तार तथा स्थानिक दूरी के आधार पर मानव प्रवास को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक देश से दूसरे देश के लिए होने वाले मानव स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जहां से अथवा जहां के लिए प्रवास होता है, ऐसे दोनों देश एक ही महाद्वीप में या अलग अलग महाद्वीपों में हो सकते हैं। इस प्रवास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना अनिवार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बृहद संख्यक अथवा अल्पसंख्यक, ऐच्छिक अथवा बलात् अस्थाई अथवा अस्थाई किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह स्थानांतरण आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक किसी भी कारण से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों में बृहद और अस्थाई प्रकृति के प्रवास का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि इसका प्रभाव दोनों देशों तथा स्वयं प्रवासी व्यक्तियों पर अस्थाई तथा गहरा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन संस्कृति का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मानव सभ्यता के प्रायः हर युग एवं काल में होता रहा है और वर्तमान में भी यह प्रक्रिया क्रियाशील है, किंतु इसकी मात्रा, गति, दिशा तथा प्रकृति में अधिक भिन्नता पाई जाती है। आदिकालीन या प्रागैतिहासिक प्रवास मुख्यतः भौतिक कारणों से होते हैं, जबकि ऐतिहासिक प्रवास मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से होते रहे हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को प्रभावित करने वाले समस्त भौगोलिक कारकों को चार वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। प्रागैतिहासिक मानव स्थानांतरण प्रायः भौतिक कारणों से होते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक शक्तिशाली था। ऐतिहासिक काल में भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रवास कटिबंध सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर के अनुसार विश्व की समस्त मानव जाति प्रजातियों का विकास मध्य एशिया में अलग अलग कालों में हुआ था। यहीं से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रजातियां बाहर की ओर फैलती गई, जिसके फलस्वरूप मानव प्रजातियों के विश्व वितरण का वर्तमान स्वरूप संभव हुआ। प्लिस्टोसीन हिम काल में कई बार हिमयुग और अंतर हिमयुग बारी बारी से आए। अंतर हिमयुग में जलवायु गर्म और मानव विकास के लिए उपयुक्त रहती है तथा मानव प्रजातियों का विकास होता है। हजारों वर्ष बाद हिमयुग के आने पर हिमराशियों का विस्तार होता था और जलवायु अतिशीतल हो जाती थी, जिसके कारण से जनसंख्या का स्थानांतरण मध्य एशिया से बाहर की ओर होने लगता था। प्रजातियों के विकास और प्रवास का यह क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहता। बाद में विकसित होने वाली मानव प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से अधिक विकसित और शक्तिशाली होती थी, जिसके फलस्वरूप ये वे पूर्ववर्ती प्रजातियों को बाहर की ओर भगा देती थी। इस प्रकार मध्य एशिया से विभिन्न मानव प्रजातियों विश्व के अन्यान्य भागों में पहुंच गई। यद्यपि उस काल में देश में की कोई संकल्पना नहीं थी, किंतु वे स्थानांतरण स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के ही थे। दूसरा, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के दो मूल कारण हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण, आर्थिक आकर्षण, तथा दूसरा, आर्थिक कठिनाई। जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक संसाधनों की कमी से जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है और विभिन्न आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं, वहां के बहुत से लोग ऐसे देशों तथा प्रदेशों में जाने के इच्छुक एवं तत्पर होते हैं, जहां उपजाऊ कृषि भूमि, खनिज पदार्थ आदि के रूप में पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। राजनीतिक प्रतिबंध के अभाव में कम आर्थिक साधन वाले प्रदेशों से अधिक आर्थिक साधन वाले प्रदेशों के लिए मानव प्रवास की धारा चलने लगती है। 17वीं-18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों में सभी आर्थिक संसाधन विकसित हो चुके थे और जनसंख्या अधिक हो गई थी, जिससे संसाधन कम पड़ते जा रहे थे। आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी और जीवन स्तर गिरने लगा था। कोलंबस द्वारा नई दुनिया का पता लगाने के बाद यूरोप से अटलांटिक पार उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के लिए जनसंख्या प्रवास आरंभ हुआ, जिसका मुख्य आकर्षण थी वहां विद्यमान विस्तृत कृषि भूमि और खनिज पदार्थों तथा शक्ति के साधनों की पर्याप्त उपलब्धि। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। धर्म एवं संस्कृति प्रचार। तथा धार्मिक संकटों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए विकसित सांस्कृतिक केंद्रों से समय समय पर छोटे बड़े मानव समूहों का विदेशों के लिए प्रवास होता रहा है। प्राचीन भारत में सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत से बौद्ध भिक्षु भारत से समीपवर्ती देशों बर्मा, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया आदि देशों के लिए गए। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यूरोपीय देशों से अनेक मिशनरियां उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के विभिन्न देशों में गईं। ऐसे प्रवास सामान्यतः ऐच्छिक होते हैं और प्रवासी स्वेच्छा से स्थानांतरण करते हैं। प्रजातीय तथा धार्मिक संकट उत्पन्न हो जाने पर अनेक बार बृहद पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण हुए हैं। ऐसे प्रवास बाध्य प्रवास की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें प्रवासी को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात धार्मिक संकटों से उत्पन्न बाध्य प्रवास की आवृत्ति और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। चौथा, राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। वर्तमान समय में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवास राजनीतिक कारणों तथा प्रभावों से ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए नियंत्रणों के कारण स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवास लगभग समाप्त या अत्यंत सीमित हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक यूरोपीय देशों से सामान्यतः अपने अपने उपनिवेशों के लिए स्थानांतरण होते रहे, जो मूलतः आर्थिक होते हुए भी राजनीतिक प्रभावों से प्रेरित थे। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात समीपी देशों में गए हुए लगभग 10 लाख रूसी लोग सरकारी प्रतिबंध के कारण स्वदेश नहीं लौट सके। 1920 ईस्वी में टर्की में राष्ट्रवादी भावना के जागरण से उत्पन्न हत्या की लहर से आतंकित होकर लगभग 3 लाख अमेरिकी लोग इटली छोड़कर भाग गए। सन 1947 में भारत पाक विभाजन से उत्पन्न बृहद स्थानांतरण राजनीति से प्रेरित प्रवास का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 170 लाख हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया। सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल के अभ्युदय के पश्चात लगभग 150 लाख फिलिस्तीनियों को शरणार्थी के रूप में अरब में शरण लेनी पड़ी थी। सन 1970-71 में पाकिस्तान की सैनिक सरकार से मुक्ति पाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों के बर्बरतापूर्वक अत्याचार से त्रस्त लगभग 1 करोड़ शरणार्थी देश की सीमा को पार करके भारत में आ गए। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के कुछ महीने में ही पुनः वह देश स्वदेश लौट गए। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। संपूर्ण विश्व में यूरोप और एशिया महाद्वीप उत्प्रवास के प्रधान क्षेत्र रहे हैं, जहां से समय समय पर मानव के बृहद प्रवास हुए हैं। अतः उत्प्रवासी क्षेत्रों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को दो प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है। पहला यूरोपीय माइग्रेशन प्रवास, दूसरा एशियाई प्रवास। पहला यूरोपीय प्रवास, यूरोपियन माइग्रेशन। उत्तरी पश्चिमी यूरोप उत्प्रवास की मुख्य भूमि है। यहाँ से 17वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जनसंख्या का स्थानांतरण समुद्र पार देशों के लिए होता रहा। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या के दबाव बढ़ने से उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे और जीवन स्तर में गिरावट आरंभ हो गई, जिससे मुक्ति पाने के लिए यूरोपवासी संसाधन युक्त नवीन क्षेत्रों की खोज में लग गए। नवीन समुद्री मार्गों तथा नई दुनिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका की खोज से नवीन प्रदेशों में आर्थिक संसाधनों के शोषण की संभावना बढ़ गई। पश्चिमी यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि के लोग तकनीकी रूप से अधिक विकसित थे। उनके साथ यूरोप में विकसित तकनीकें तथा ज्ञान भी विदेशों में पहुंच गए, जिससे शीघ्र ही नए क्षेत्रों में आर्थिक संसाधनों का तीव्र विदोहन आरंभ हो गया। यूरोपीय देशों से प्रवास मुख्यतः दो दिशाओं में हुआ। पहला, विरल बसे हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पहुंचना सुगम था और प्रचुर जैविक संसाधन विद्यमान थे। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय तटवर्ती क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। यूरोप से गए हुए लोगों ने उन भागों में कपास, गन्ना, तंबाकू, कहवा, चाय, गर्म मसाले, चावल, नील आदि की कृषि आरंभ की। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां जनसंख्या विरल और जलवायु यूरोपवासियों के लिए उपयुक्त थी। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य और कनाडा के पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड इसी प्रकार के प्रदेश हैं जहां के लिए यूरोपीय देशों से बड़े पैमाने पर मानव प्रवास हुए। ब्रिटेन के अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के लोगों ने भी आर्थिक उन्नति तथा उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से समुद्र पार देशों के लिए प्रवास किया। इनके उपनिवेश संसार के विभिन्न भागों में स्थित थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात राष्ट्रीय सरकारों ने विदेशी आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही अनेक एशियाई, अफ्रीकी तथा दक्षिणी अमेरिकी देशों के स्वतंत्र हो जाने से यूरोपियों के उपनिवेश समाप्त हो गए। अतः अब यूरोपीय प्रवासियों की संख्या बहुत कम हो गई है। सन 1946 के पश्चात पूरे यूरोपीय महाद्वीप से लगभग 1 करोड़ प्रवासी विदेशों में गए, जिनमें ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड का मुख्य योगदान रहा। यूरोप से सर्वाधिक प्रवास आंग्ला अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए हुआ, जहां लगभग 4 करोड़ यूरोप निवासी पहुंचे। इसके पश्चात लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि के देश आते हैं। दूसरा, एशियाई प्रवास, एशियन माइग्रेशन। प्रागैतिहासिक काल में मध्य एशिया से अनेक बार मानव प्रजातियों की बाहर की ओर स्थानांतरण हुआ और वहां पर विकसित होने वाली मानव प्रजातियां प्रवास के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में पहुंच गईं। 18वीं शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्वयुद्ध तक चीन, भारत, जापान आदि अधिक जनसंख्या वाले देशों से निकटवर्ती कम जनसंख्या वाले देशों के लिए प्रवास होता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले उत्तरी चीन से प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग विदेशों को जाते थे। दक्षिणी चीन के प्रवासी अधिकतर दक्षिण पूर्वी एशिया के विरल जनसंख्या वाले देशों में जाकर बसते रहे। हजारों प्रवासी चीनी परिवार मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, बर्मा आदि देशों में जाकर बसे। आज भी मलेशिया की जनसंख्या में लगभग 45% और थाईलैंड की जनसंख्या में 70% चीनी मूल के लोग हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और बर्मा की जनसंख्या में प्रवासी चीनियों का प्रतिशत 2 से 5 तक पाया जाता है। जापान की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने विदेशी प्रवास को प्रोत्साहित किया है। जापानी सरकार ने भी प्रवास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। जापान से प्रवास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। सन 1980 से 1900 तक की अवधि में जापान से उल्लेखनीय प्रवास हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व जापान से समीपवर्ती देशों मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि के लिए प्रवास हुए और लाखों जापानी विदेशों में जाकर बस गए। भारत से प्राचीन काल में, विशेष रूप से बौद्ध काल में, बहुत से लोग धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए समीपवर्ती देशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों को गए जिनमें से कुछ स्वदेश नहीं लौटे और विदेशों में ही बस गए। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश उपनिवेश में खेतों तथा बागानों के काम करने के लिए लाखों भारतीयों को दक्षिणी अफ्रीका, नेटाल, मॉरिशस, फिजी द्वीप, गियाना, त्रिनिडाड आदि देशों को ले जाया गया। भारत से चाय बागानों तथा खेतों में काम करने तथा अन्य श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए हजारों भारतीय बर्मा, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया आदि पड़ोसी देशों में भी गए और अधिकांश वहीं बस गए। आज लगभग 50 लाख प्रवासी भारतीय विदेशों में हैं। सन 1947 में भारत पाक विभाजन के परिणाम स्वरूप लगभग 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान से भारत आए और 3 करोड़ से अधिक मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अस्थायी विदेशी प्रवास लगभग अवरुद्ध है और केवल कूटनीतिक दलों, शिष्टमंडलों, वैज्ञानिक कलाकारों, खिलाड़ियों आदि के प्रवास सीमित संख्या में और सीमित समय के लिए ही होते हैं, जिनकी प्रकृति पूर्णतया अस्थायी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रभाव। पहला, पहले भी बताया जा चुका है कि प्रवास का उल्लेखनीय प्रभाव जहां से प्रवास होता है और जहां के लिए प्रवास होता है और स्वयं प्रवासी जनता, तीनों पर प्रभाव पड़ता है। प्रवास के उपरांत ये तीनों अपने मौलिक रूप में नहीं रह जाते हैं, बल्कि इनमें कमोवेश परिवर्तन अवश्य हो जाता है। दूसरा, सामान्यतः प्रवासी अपने साथ अपने मूल देश की तकनीक, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा आदि भी ले जाता है और जहाँ वह बसता है अपनी सामाजिक परंपराओं, मूल्यों तथा संस्कृति आदि को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करता है। प्रवासी नए परिवेश से प्रभावित हुए बिना भी नहीं रह पाता है, अतः अप्रवासी क्षेत्र में नवीन संस्कृति विकसित होती है जिस पर उत्प्रवासी और अप्रवासी दोनों ही देशों की संस्कृतियों का प्रभाव पाया जाता है। यूरोपीय देशों के उपनिवेश विश्व के जिन भागों में थे अथवा जहां जहां यूरोपीय समुदाय बस गए थे, वहां यूरोपीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो गया। तीसरा, प्रवासी देशों से अधिक संख्या में जनसंख्या के स्थानांतरित हो जाने के कारण वहां जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है, जिससे बेरोजगारी में कमी और गिरते जीवन स्तर में रुकावट होती है। चौथा, पिछड़े हुए नए क्षेत्रों में तकनीकी रूप से विकसित मानव समुदाय के पहुंचने पर उस क्षेत्र के संसाधनों का विदोहन आरंभ हो जाता है और कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन के साधनों, व्यापार आदि का विकास तीव्रता से होने लगता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों के तीव्र आर्थिक विकास के कारण यूरोपीय प्रवास ही है। पांचवा, प्रवासी समुदाय का संबंध सामान्यतः अपने मूल देश से भी बना रहता है, जो दोनों देशों के व्यापारिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने में सहायक होता है। प्रवासी अपने क्षेत्र की वस्तुओं को अपने मूल देश को भेजते हैं और बदले में वहां से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं मंगाते हैं। छठा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से जनसंख्या के आयु वर्ग पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, विशेष रूप से जब श्रमिक के रूप में अधिकांश युवकों का प्रवास होता है। इससे उत्प्रवासी प्रदेशों में स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों का अनुपात बढ़ जाता है। छठा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से जनसंख्या के आयु वर्ग पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, विशेष रूप से जब श्रमिक के रूप में अधिकांशतः युवकों का प्रवास होता है। इससे उत्प्रवासी प्रदेश में स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों का अनुपात बढ़ जाता है और अप्रवासी क्षेत्र में कार्यशील पुरुषों के अनुपात में वृद्धि होती है। सातवां, जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित देशों की संस्कृति, भाषा, तकनीक आदि के आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच पारस्परिक मित्रता, सहानुभूति और सहयोग की भावना में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों में अधिक प्रगाढ़ता की संभावना होती है।